उसके जीवन में कुछ नहीं। प्रसन्नता आनी चाहिए। प्रसाद में गीता का समापन है और विषाद में गीता का प्रारंभ है। अब शंका ये होती है कि आप श्री ने कहा बिल्कुल अक्षर तौर सत्य कि ये मुक्त ही नहीं, अर्जुन महामुक्त है। अर्जुन कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है। बद्ध जीव से कृष्ण की चर्चा और परचर्चा नहीं हो सकती। यदि अर्जुन भी माया से बंधा हुआ होता तो भगवान उसके साथ संभाषण भी नहीं करते। माया से बद्ध जीवों के साथ प्रभु कभी वार्तालाप नहीं करते। अर्जुन के साथ विषम परिस्थिति में जो इतना गीता की चर्चा की उसका कारण है पांडवानाम धनंजय। और सब बातों में युधिष्ठिर बड़े हैं, पर जहां विभूति योग का वर्णन करने लगे वहां बताया पांडवों में अर्जुन में हूं। तो स्वयं अपने आप की चर्चा का नाम गीता है। यह अर्जुन स्वतंत्र नहीं है। ऐसा अर्जुन जो जीवन में कहता था अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, न तो मैं जीवन में कभी दीनता लाऊंगा और न कभी युद्ध से भागूंगा। जिस अर्जुन ने ये दो प्रतिज्ञा की, जिसको जीवन भर उसका निर्वाह किया, आज वह इतना पलायनवाद स्वीकार कर रहा है और भाग रहा है, ये क्या बात है। इसका विचार करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और उनके आशय को हमारे तत्वबोधनीकार जो हैं, उन्होंने गीता में बताया कि ये विषाद जो है ये विषाद अर्जुन का नहीं है, ये विषाद श्री कृष्ण का दान है। वल्लभाचार्य जी महाराज के आशय को बताते हुए श्री वल्लभलाल जी कहते हैं कि ये विषाद भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को दिया, क्योंकि जब तक मानव को जगत से कुछ विषाद यानी वैराग्य नहीं होता तब तक वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता। हमारे गीता के अध्याय के अंत में क्या आता है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे इत श्रीमद भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी जब तक अर्जुन न बनेगा तब तक उसके साथ ब्रह्म विचार कैसे किया जाएगा। इसलिए यहाँ विषाद को भगवान ने स्वयं दान दिया अर्जुन को। अर्जुन भगवान ने जब दिया तो विषाद से क्षीण हो गया, तब भगवान उस विषाद को धीरे धीरे ब्रह्म विद्या से हटा रहे हैं, स्वयं दे रहे हैं, स्वयं हटा रहे हैं। जो कुछ करता कारयिता हरि, करने वाले और कराने वाले भक्ति शास्त्र में भगवान ही हैं। इसलिए ज्ञान का वेदांत अलग है और हमारे भक्ति वेदांत भक्ति का वेदांत अलग है। ज्ञान का वेदांत वो ब्रह्म जो कुछ हो वो ब्रह्म वेदांती कहते रहे, हमारे भक्ति का वेदांत तो हमारी गोपी जन कहते हैं। उन्होंने कहा भगवान के नेत्र नहीं, गोपियां कहती हैं अरे लाख बार अंजन अंजायो इन आँखिन में। हमने लाखों बार काजल लेकर के श्री कृष्ण के नेत्रों में लगाया, उस संजन को तुम लोग निरंजन कहते, कैसे हो सकता है। जो संजन है वो निरंजन कैसे हो सकता है। आप कहते भगवान के चरण नहीं, हमने गायों को चराते हुए उन्हें देखा, जब भगवान के चरण ही नहीं तो गोचारण लीला किसने की। भगवान के यदि श्री हस्त नहीं है तो श्री गिरिराज किसने उठाया। ये गोपी के अकाट के तर्क, श्री गोपिकाओं के अकाट के तर्कों के आगे उद्धव जी नमित हो गए, उद्धव जी श्रमित हो गए और उद्धव जी झुक करके कहने लगे वंदे नन्न प्रवस्त्रीणाम पाद रेणु मही सौ यासाम हर कथोद्गीतम पुलाति भवन त्रय। मैं नंद बाबा की वृद्ध की स्त्रियों के को प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्ञान वेदांती हूं, मैं भक्त वेदांती नहीं हूं। महाराज वो उद्धव जी ज्ञान वेदांती थे, उनको भक्ति वेदांत पढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रज में भेजा कि जाइए भक्ति वेदांत पढ़ना हो तो गोपिकाओं की शरण लीजिए, श्री राधा रानी की शरण जाइए तो आपको भक्ति वेदांत मिलेगा। भक्ति वेदांत का नारायण अलग है और ज्ञान वेदांतियों का नारायण अलग है, ये तीन ही तो आपका शब्द है, भक्ति वेदांत और नारायण। तो महाराज विशेष क्या कहे, बड़ा आनंद है, मन तो ऐसा करता है पूरी रात हमारा ऐसा करता रहे, पर व्यवहार तो देखना पड़ता है। ब्रह्म विद्या का अधिकार ही इसे बनाने के लिए, इसके लिए कुमति को हटाने के लिए एक छोटी सी बात कर दूं, डेढ़ मिनट की है। अर्जुन से कहा तुम द्रोणाचार्य को बाणों से मारो, अर्जुन से कहा तुम भीष्म पितामह को बाणों से मारो। अब जरा दो मिनट विचार करें आप सब लोग। तो अर्जुन कहता है महाराज द्रोण मेरा विद्या गुरु है और भीष्म मेरा पूर्वज पुरखा है, ये दोनों तो पूजनीय हैं, जो पुष्पों से पूजनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं, नमनीय हैं, उनके लिए हम कैसे बाणों से बाणों मारे इनमें। तो हट गया। तो अब श्री वल्लभाचार्य महाराज ने विचार किया, क्या गुरु को न मारना अर्जुन की कुमति है या सुमति। बस ये पकड़ के मैं समझ सकता हूं। तो लोगों ने, धर्मशास्त्र के अनुयायियों ने एक स्वर से कहा ये तो अर्जुन की सुमति है गुरु को न मारना। हमारे श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं आप लोगों ने गीता को नहीं समझा, श्रीमद् भागवत को नहीं समझा। यहां चाहे गुरु हो और चाहे पूर्वज हो, यहां जो कृष्ण का विरोध कर रहा है उसमें गुरुत्व तो हो ही नहीं सकता। और कृष्ण का विरोध करने वाला कभी पूर्वज वंदनी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बल गुरु तजो कंस ब्रज बनतन भई जग मंगलकारी। कृष्ण के विमुख होने से श्री वल्लभाचार्य जी ने कुमति और सुमति का लक्षण बताया कि भगवत की रचित कार्योन्मुखी मति सुमति। भगवान जो कुछ करना चाहते हैं उसको सहर्ष करने को जो तैयार हो जाता है उसका नाम है सुमति, और भगवान जो करना चाहता है उसका जो जवाब सवाल करने लगता है कथम भीष्मम हम संखे द्रोणंच मधुसूदनो इसमें प्रत्यामी पूजा रहू अर्जुदनो, मैं गुरु के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, ये अर्जुन की कुमति है। यहाँ गुरु को न मारना ही कुमति है, क्योंकि भगवान उनके आसरा वेश के कारण उसे मरवाकर दूसरा दिव्य देह देना चाहते। ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वासांश जीर्णानी यथा विहायो नवान गृहराणी वासांश जीर्णानी, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, वस्त्रों को छोड़कर हम नवीन वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इस जर्जरित कलेवर को छोड़कर नवीन देवता देह धारण करने की अभिलाषा कर रहे हैं, इसलिए इनके मनोरथ को अर्जुन तू पूरा कर दे। इसलिए भगवान की बात को न मानना और भीष्म के वध से और द्रोणाचार्य के वध से पलायनवाद किया, भगवान ने कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, पूरे क्षुद्र विचार है तू बड़ा दुर्बल हृदय का है। लोगों ने कहा महाराज अर्जुन को कुमति सिद्ध करना गुरु न मारने से, तो कहा नहीं जो मर रहे हैं उनसे ही पूछ लो। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं जो मरने वाले हैं उनसे ही पूछ लो। तो भागवत में भीष्म से पूछा कि अर्जुन ने जो तुम पर बाण नहीं छोड़ा ये अर्जुन की कुमति है या सुमति है। तो अर्जुन भीष्म स्तुति नौवां अध्याय भागवत प्रथम स्कंद नौवां अध्याय भीष्म स्वयं करता है प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमत महारदात्म विद्या चरण रति ही परमस्य पश्चिमी। सारांश संक्षिप्त में भीष्म पितामह कह रहा है कि जिसको खोटी बुद्धि हो गई, मुझे मारने से भगा यानी खोटी बुद्धि, भगवान मेरा हित चाह रहा है और मुझे इस पांडव कौरवों के जाल जंजाल से छुड़ाकर दिव्य देव देह देना चाह रहा है, भगवान के उस इष्ट को न समझ कर इसने जो मुझ पर बाण नहीं मारे तो कुमति या अर्जुन की सबसे खोटी मत। इसके लिए अहरत आत्मविद्या, गीता का दूसरा नाम है आत्मविद्या। आत्मविद्या के द्वारा अर्जुन की कुमति को समाप्त कर और गुरु के मारने के लिए तैयार कर उसको सुमति स्थापित की। तो सिद्धांत गीता का यही है कि तो कुछ भी हो जाविध राखे श्याम, प्रभु जो करना चाहता है, जो हमारे यहां लगता है नोदना चोदना लक्षणों विधि जो है वही विधिवाक्य है। वेद जिसको कहे, अरे वेद क्यों अभी प्रामाण्य हमारे भक्ति शास्त्र में वेद को प्रमाणित क्यों माना जाता है, वो हमारे श्री बाल कृष्ण की वाणी है, श्वास है, यस्य निश्वसितम् वेदाः। यदि भगवान का वो श्वास नहीं होता तो प्रामाण्य नहीं आता। जब भगवान के श्वास में इतना प्रामाण्य वेद में, तो भगवान या वैखरी भाषा से अर्जुन से कह रहा है, क्या कृष्ण वाणी से भी ज्यादा किसी की वाणी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि मया हताम स्वम जहि महाव्यथिष्ठा। सब जगह परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, व्यापार कर लेने के बाद लाभांश मिलता है। और यहां देखिए एक श्लोक में झांकी करके समाप्त कर दूंगा भाई, नहीं तो बात तो बहुत है, फिर होगी फिर मिलेंगे हम तुम तो। तो भीष्मंच द्रोणंच जयद्रथंच करणम तथान्यानपि योधवीरान मया हताम। स्पष्ट कह दिया, त्वं जहि माम यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणेश पत्नान। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रबल पत्र दे दिया। भगवान कहते हैं भीष्मंच अधरन, जो कार्य है जो भगवान इच्छा करते हैं उसमें जो सहाय करती है, इसलिए केकई को कुमति बताने वाला वही अज्ञ है जिसने साधु सभा नहीं की, जिसने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वो केकई को कुमति बता सकता है। केकई तो निमित्त बनी है भगवान के कार्य करने में, केकई महाभागा है, केकई वंदनीय चरणा है, क्योंकि जो ईश्वर के कार्य करने में अपन जघन्य गालियां सहती हुई भी भगवत कार्य के लिए तैयार है। इसलिए भगवत को कार्य कर को संपादन करने वाला जो ये अर्जुन है, इसको आत्मविद्या गीता के द्वारा ही उन्होंने इसको मति को निवारण किया। और एक ही कहा, और कुछ आप पर हो या न हो, कालेषु माम अनुस्मरण जनो जघन्य अन्य वरन्ति गुणहीन जनो जघन्य व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो। अखिल वेद के विशेषज्ञ व्यास जी वदत, व्यास जी कह रहे हैं, व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य।
परिव्रजकाचार्य वर्जस्तो श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। ओं विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाद की जय। रूपानुगाचार्य गुरुवर्ग की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। भक्ति विघ्न विनाशन करीन सिंह देव की जय। भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वाधुष गिरिराज गोवर्धन की जय। अनंत गरीब वृंद की जय। गीतागोष्ठ की जय। गीतागोष्ठी आयोजनकारी भक्त वृंद की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
परम श्रद्धे श्री मनलाल जी शास्त्री, परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण जी महाराज, गीता प्रेमियों, गीता भक्तों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच दो विभूतियां गीता गोष्ठी के इस आयोजन के अवसर पर उपस्थित हैं। गीता आश्रम गौघाट प्रति माह पूर्णमासी के दिन इस गोष्ठी का आयोजन करता है और ये सब आप सब लोगों के संयुक्त प्रयास से और परम शुद्धे श्री मनलाल जी शास्त्री जी के आशीर्वाद से पिछले लगभग 3 वर्षों से सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। जैसा आपको पता है कि गीता आश्रम गौघाट की स्थापना श्री श्रद्धेय श्री हरिहर जी महाराज ने यहां पर लगभग 1950 में की थी और गीता आश्रम की करीब लगभग 400 शाखाएं विश्व भर में फैल गई हैं। गीता अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन अगले वर्ष, नवम गीता अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन अगले वर्ष वृंदावन में 21 से 24 नवंबर तक हम आयोजित कर रहे हैं। प्रथम आयोजन, जो प्रथम महासम्मेलन हुआ था 1972 में, वो हमारे शंकराचार्य शरणानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात 7 अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन और हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर करण सिंह और गीता पर जो विभिन्न विद्वान हैं उनका निरंतर हमें सहयोग रहता है। इस 21 से 24 नवंबर तक होने वाले गीता महासम्मेलन में इसका आयोजन फोगला आश्रम वृंदावन में होगा और संत महात्मा और विद्वान न केवल भारतवर्ष से बल्कि भारतवर्ष के बाहर से और विभिन्न धर्मों के, न केवल हिंदू धर्मों के बल्कि और धर्मों के अनुयायी भी गीता पर अपना व्यक्तित्व और अपना अनुसंधान और अपने लेख और अपनी रचनाएं उस महासम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी गीता भक्तों से आग्रह करता हूं कि तन मन और धन से इस हमारे महासम्मेलन में आप सहयोग दें। होली के पश्चात कार्य गीता महासम्मेलन का बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो जाएगा और महाराज श्री यहां पर कुछ समय रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गीता एक अनुपम ग्रंथ है और गीता पर प्रतिमाह हमें अमृतमयी शास्त्री जी की वाणी सुनने का समय समय पर हम लोग लाभान्वित हुए हैं और मौका मिला है। गीता प्राणी मात्र का कल्याण कर सकती है।
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। प्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूं विष्णुपाद अष्टोत्तर सरस्वत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पश्चात हमारे परम श्रद्धेय श्री शास्त्री महोदय जी का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। विशेष करके ये ब्रज की विभूति है। विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, भागवत के भी विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, गीता के भी हो सकते हैं, किंतु भागवत के निर्भीक वक्ता उसके तात्पर्यों को अनुधावन कर और जनसाधारण में उसे व्यक्त करना ये साधारण बात नहीं। कुछ दिन पहले मथुरा में कोई भागवत विचार विमर्श के संबंध में कोई इष्ट गोष्ठी हुई थी, मुझे भी उसमें निमंत्रण किया गया था। मैं अस्वस्थतावश बंबई चला गया, मैं उस सभा गोष्ठी में नहीं था, किंतु मैंने सुना। एष्टी गोष्ठी का कुछ विषय था कृष्ण का आविर्भाव स्थल जन्म स्थल कहाँ है? मथुरा है या गोकुल है? एक स्पर्श से मथुरा के जितने भी पंडित हैं और जगहों के हैं, उन्होंने कहा मथुरा है। किंतु पंडित चूड़ामणि हमारे मनमोहन लाल शास्त्री जी ने भी कंठों से हमारे आचार्य परंपरा की बातों को, मान्यताओं को, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ही नहीं, भागवत के जितने बड़े बड़े टीकाकार हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, सुखदेव गोस्वामी का जो विचार है, ने भी कंठ से केवल एक तरफ ये और एक तरफ मथुरा के जितनी विद्वत मंडली थी, किंतु इन्होंने सिद्ध किया कि कृष्ण का आविर्भाव यहां हो सकता है, किंतु जन्मोत्सव प्रकट ये जसोदा जी के गर्भ से गोकुल नहीं हुआ। ऐसे निर्भीक विद्वान ब्रज की विभूति को मैं अपना सादर अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। बड़े बड़े वक्ता लोग मथुरा में आते हैं भागवत के, बड़े बड़े विद्वान भी लोग आते हैं, जहां पर के लाखों लोग जाते हैं, किंतु लाखों लोग सार को ग्रहण नहीं करते, ऊपर से उसकी कुछ मधुपुष्पित वाक्यों को ही लेकर के बस उसी में रमण करते हैं। अनुभवी विद्वानों की बातों को ग्रहण करना साधारण जन समाज के लिए बहुत जरा कठिन है। उसके बैकग्राउंड में, उसकी पटभूमिका में कुछ होना चाहिए। सदगुरु जब तक न रहे, वैष्णवों का संग जब तक न रहे, तो गीता और भागवत का तात्पर्य समझना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए इस विषय में अधिक मैं न जाकर के अपने वक्तव्य कराऊंगा, इसलिए मैं इस विद्वान पुरुष का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। विशेष करके यहाँ के सब समय पूर्णिमा के तिथियों अवसरों पर ये आते हैं, आप लोग इनके हृदय की भावों को समझने की चेष्टा करेंगे। साधारण विद्वान नहीं है। यदि ये ब्रज जब चले जाएंगे अप्रकट में, इनकी अभाव की पूर्ति करना बड़ा भारी कठिन होगा। मैं तो मथुरा में किसी को नहीं देख रहा, शब्द के लालित्य से भले ही लोगों का आकर्षण करे, किंतु जो उसका सार्वभौम सत्य है, उसकी तह तक पहुंचने वाले विद्वान बहुत कम है। उनमें से मैं समझता हूं कि ये यथार्थ योग्य और विद्वान है। इन लोगों का सानिध्य जब आप लोगों को प्राप्त है, मैं समझता हूं कि आप लोगों का यह परम सौभाग्य की बात है। मेरे आदरणीय उपस्थित सज्जनों और मथुरावासियों, मैं सबसे पहले एक बात ये भी कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों का चिर ऋणी हूं। मैं यहां पर भाषण देने के लिए नहीं आया, न तो मैं विद्वान हूं। हम लोग तो अकिंचन निष्किंचन चैतन्य महाप्रभु की धाराओं में केवल हरिनाम ग्रहण करने के लिए, उनके अनुसार में कुछ राधा जी की महिमा, कृष्ण की महिमा समझने के लिए, ब्रज की रूखी सूखी माधुकरी रोटियों पर जीवन निर्वाह कर यहां रहने वाले आए। बैकुंठ में हम लोग नहीं रहना चाहते। हम लोग कहीं भी द्वारका मथुरा अयोध्या की नहीं रहना। ब्रज में जैसे तैसे लोगों की बातें सुनते हुए भी, यहां की जूठी रोटी ऊपर निर्वाह करते हुए हम लोग यहां पर भजन कर सकें, और इस भजन में आप लोग हमारी सहायता करते हैं। योग्यता नहीं रहने पर भी इतना सम्मान आप लोग देते हैं कि मैं तो गदगद हो जाता हूं। यथार्थ में आप लोग सज्जन आदमी हैं, इसलिए हमारे जैसे जिसमें कुछ भी गुण नहीं है तो भी इतना सम्मान देते हैं। आज कुछ गीता की इष्ट गोष्ठी है, आप लोग शास्त्री जिसके संबंध में सुने हैं, बड़े बड़े अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां भी हुई हैं, आप लोग उसमें सम्मेलन में भाग लिए होंगे। गीता पर बहुत सी टीकाएं हैं,
आज विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर कि गीता का संदेश न पहुंचा हो और वहां पर गीता का अनुवाद उस भाषा में न हुआ हो। गीता जिसके गान करने से ही प्राण हो जाता है। जगत में तरह तरह की समस्याएं हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जो समस्याएं समाज को निगल रही थी, करीब करीब वही समस्याएं आज भी वो खड़ी हैं मुंह बाए हुए। भौतिक बात घेर रहा है, ये सर ही सर्वस्व है। विषयों का संग्रह करना ही हमारे जीवन का प्रधान कर्तव्य हो गया है। आत्मा की भूख मर चुकी है, भौतिक विषयों का सुख, इसकी भूख हमें खूब जोरों से लगी हुई है। आज हमारा भारतीय संस्कृति का जो मूल धरोहर तत्व विचार था, आज यानी कहां चला जा रहा है। सब लोग मानो उसे सो रहे हैं। सबसे गीता का पहले का ज्ञान कृष्ण कह रहे हैं, गीता अनादि शाश्वत है। गीता एक ऐसा अनुपम संस्कृति का एक अमृत स्वरूप है जिसमें सर्वकालिक सर्वसामयिक सर्वदेशीय समस्त समस्याओं का निदान है। केवल वर्तमान काल का ही नहीं, न अतीत काल का, न भविष्य काल का, अनादि अनंत काल से जितनी प्रकार के लिए कोई भी समस्या उठ सकती है उसका सरल सहज अत्यंत स्वाभाविक रूप में समाधान गीता में है। अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं थे, कृष्ण कोई मनुष्य या केवल आचार्य नहीं थे, इसीलिए गीता की महिमा में ही वो लिखा गया, सर्व उपनिषद दो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम दुग्धम गीतामृतम। समस्त जितने उपनिषद हैं, वेद हैं, उपनिषद मैंने यहां पर वेद ही धर रखी है, समस्त वेद और उपनिषद श्रुतियां जितनी हैं, वेद के अतिरिक्त पुराण को भी वेद से अलग मत रखेंगे। महाभारत इत्यादि पंचम वेद है। वेदों के अर्थ को पूर्ण करते हैं या वेदों से भी अधिक पुराने हैं, इसलिए ये पुराण शब्द है, वो वेदों से अलग नहीं। क्लिष्ट भाषा में वेद हैं, पुराण जरा सहज भाषा में, किंतु भाव वेदों से भी अधिक गंभीर है पुराणों का। तो ये सब मिलकर के गाय हैं। कृष्ण स्वयं इसके दोहन करने वाले गोप हैं। पार्थ जो हैं वो वत्स हैं और सुखी जन जो हैं ये भोक्ता है। और गीता के उपदेश ये जो अमृत है ये दुग्ध स्वरूप है। कोई कोई समझ लेते हैं ये अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन को कभी नहीं मोह हुआ। केशव इत्यादि जो शब्द गीता में हैं, इसके द्वारा ऐसा समझा जाता है कि अर्जुन मुक्त महापुरुष थे। केवल मुक्त ही नहीं, मुक्त से बहुत ऊपर कृष्ण के सखा थे। कृष्ण जब आते हैं तो अपने परिकरों के साथ में आते हैं, जैसे कृष्ण गोपियों इत्यादि के साथ में ब्रजवासियों के साथ में आए, उनमें कोई भी बद्ध जीव नहीं थे या बद्ध कोई गोपियां नहीं थी। या तो नित्य सिद्धा कृष्ण की परिकर राधा जी की काय व्यूह या कृष्ण के काय व्यूह स्वरूप अथवा साधन सिद्धा, ऐसे सब लोग थे कृष्ण के लीलाओं में। उसी प्रकार से अर्जुन मुक्त महापुरुष थे, किंतु उनको कुछ बछड़ा का काम करना पड़ा। जैसे गायों को पिन्हाने के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है, किंतु वो केवल दूध बछड़े के लिए नहीं, विश्व के लिए था और विश्व के लिए है और रहेगा। इसलिए अर्जुन बद्ध जीव नहीं है। जोग माया के प्रभाव से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं तो आत्म माया के द्वारा करते हैं, इसलिए जोग माया के प्रभाव से अर्जुन को कुछ मोह जैसा हुआ, जैसे यशोदा जी को या कृष्ण को स्वयं बालपन रस का जो आस्वादन त्यागि करते हैं, ये मुग्धता उनकी और सर्वज्ञता दोनों साथ में होती है। उनकी जो मुग्धता है वो जोग माया के प्रभाव से, जोग माया में अपनी माया आत्म माया है, वो किसी दूसरे की माया नहीं, और उनके साथ साथ में सर्वज्ञता भी होती है। जिस प्रकार से ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण का दोनों का एक साथ में रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से ये मुग्धता, अर्जुन की मुग्धता और उनकी वो मुक्त महापुरुषता दोनों साथ साथ में। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा दूध भी नहीं होता। किंतु एक बात मैं प्रसंग बस कह देना चाहता हूं, गीता की तो इतनी महिमा है, गीता में सब कुछ है, किंतु गीता आखिर दूध ही है। दूध को गर्म करके दही बनाया जाए और उस दही का मंथन यदि किया जाए तो मंथन करने से मक्खन, और उसको फिर गर्म कर दिया जाए तो मक्खन से भी कुछ असाध चीजें आ जाते हैं, तभी उपयोग आती है, फिर उसमें से घी निकलता है। ये घी स्थानीय श्रीमद्भागवत है। श्रीमद्भागवत को समझने के लिए गीता का यदि पठन भूमिका न रहे तो कोटि जन्मों में भी हम श्रीमद्भागवत कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत का भी आधार ये गीता है। हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव के आचार्य के अनुसार में दो चार बातें मैं कहूंगा, अधिक मैं नहीं निवेदन करूंगा। विद्वत समाज हैं और ये पंडित जी भी हैं, आप लोग उसको कहेंगे। गीता में करीब करीब चार पांच उपदेश दिए गए हैं, पांच प्रकार के उपदेश। एक जिसको जेनरल कहते हैं साधारण उपदेश, दूसरा गुह्य उपदेश, तीसरा गुह्यतर उपदेश, चौथा गुह्यतम उपदेश और पांचवा है सर्व गुह्यतम परमम वचः। ये पांच प्रकार के उपदेश पाए जाते हैं। मानो अर्जुन को मोह हो गया अपने कुटुंबों को, बंधु बांधवों को, भाइयों को, ससुर को, या किसी को मारेंगे नहीं, धनुष बाण लेकर के रख दिया, मोह हो गया। इस मोह को ही उन्होंने पांडित्य समझा, कुछ समझ न सके, किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हम लोग भी अपने जीवन काल में ऐसे ही विषय आते हैं, समस्याएं आती हैं, किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उस समय में यदि ऐसा कोई योग्य गुरु हो जिसके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर सकें और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, ऐसा यदि भाव हो और गुरु भी कैसा हो, शब्द ब्रह्मनिष्ठ पर ब्रह्मनिष्ठ और संसार से आसक्ति रहित, जिसका श्रीमद्भागवत में लक्षण दिया गया है, गीता में भी बतलाया गया है, ऐसा यदि गुरु हो और उसके चरणों में सर्वस्व अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के हम अपने को अर्पण कर सकें, तो गुरु उसको कुछ बतला सकता है। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके कहा, आप जो कुछ कहेंगे करिष्ये, मैं आपके वचनों को मानूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। मैं सोच नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं। यह उनका मोह था। कृष्ण ने यहीं से आरंभ किया। अशोच्यान अन्न शोच अस्पन प्रज्ञावादान से भाष से गतासु न गतासु नान शोचन की पंडित। अरे मूर्ख की तरह के होकर के और पंडितों जैसा बोलता है। अरे ये चले गए या चले जाएंगे उनके लिए तुमको ये कैसे अनार्य जुस्तम अनार्यो उचित तो बुद्धिमानों के लिए ये शोभित नहीं है। ऐसे के लिए तुम मोहित हो रहे जो नहीं जाएंगे जो चले जाएंगे। जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मितस्य च जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। इसके लिए बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते हैं इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। बांसा से जीर्णानी जथा विहाय इत्यादि श्लोक बोले नैनंग छिदंत शास्त्राणी नैनंग दहास पाप। दो प्रकार की वस्तुएं हैं इसलिए साधारण रूप में आत्म और अनात्म तत्व का विवेक उन्होंने प्रस्तुत किया जो सबके लिए पृष्ठभूमि में सबसे पहले ये गीता में जरूरत है। आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो मोह होने के मोहित होने के लिए बाध्य है माया में अवश्य हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार की चीजें हैं जितनी भी दृश्यमान जिसको हम लोग देख रहे हैं ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये मायामय वस्तु है जो कुछ हम देख रहे हैं ये अचेतन है प्रभु की ही लीला है विलास है किंतु है अचेतन जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती जिसमें स्वतंत्र सुख दुख की अनुभूति नहीं होती उसको कहते हैं अचेतन। ये शरीर सब समय मरा हुआ है इसका जन्म है मरण भी है और इसके अंदर में जो आत्मा है वो अजर अमर है। ये कपड़े जैसा बदलने वाला है इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी नहीं है कर्तृत्व भी नहीं है किंतु हम इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। इस शरीर के मरने से हम मरेंगे और शरीर के जीवित रहने से जीवित रहेंगे। आत्मा इसके अतिरिक्त भी रह सकती है। आत्मा माने होता है मैं ये मैं हूं कौन ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन ये भगवान का अंश है। इसके संबंध में बहुत सी बातें हैं उस दार्शनिक रूप में नहीं जाऊंगा किंतु ये समझिए कि हम उनके नित्य दास हैं। अंश माने यहां दासत्व का भाव भगवान का कोई टुकड़ा नहीं होता है भगवान तो सब समय परिपूर्ण अखंड तत्व हैं। तब उनकी शक्ति के द्वारा ये सब मंत्र की भांति जैसे किसी चीज से प्रकट हो जाती है। हम लोगों के संप्रदाय में इसको परिणाम बतलाया गया है शक्ति परिणाम। वल्लभाचार्य ने भी इसी रूप में कुछ किया। सब वैष्णव के विचार करीब करीब थोड़े से वैशिष्ट हैं कहीं भी वैष्णव आचार्यों में कोई अंतर नहीं। इसलिए समस्त जीव कोई मानो और न मानो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास प्रत्येक जीव उनको भूल करके इस जगत में शरीर में मैं की बुद्धि आत्मबुद्धि आई है इसलिए सब मोह का कारण है। यदि कोई सुख और शांति चाहता है यदि कोई भागवत और गीता में प्रवेश करना चाहता है अपनी संस्कृति में प्रवेश करना चाहता है इस लोक में परलोक में सुखी होना चाहता है तो उसको समझना चाहिए ये अनात्मा है इसके अंदर में आत्मा है। पशु पक्षी कीण पतंग तीर्ण गुलमलता सबके अंदर में आत्मा है। उसका जो दर्शन करता है वही यथार्थ पंडित है। सुकर में भी वही आत्मा गाय में भी वही आत्मा वही मैंने वैसे ही आत्मा समझ आती है सर्वत्र वही आत्मा इसको जो दर्शन करता है संभाव से और प्रभु का अधिष्ठान ज्ञान करके सब जीवों को आदर देता है वो यथार्थ पंडित व्यक्ति। इसलिए गीता के द्वितीय अध्याय में आत्म और अनात्म तत्व का भी विवेचन किया गया है। ये साधारण विचार है इसलिए सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जय जो जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस सब विधिहार ऐसा समझ करके, इसको पारमार्थिक न समझ करके, इसको केवल ये जगत में रहने के लिए जहां तक हो सके इसको समझ करके चलना चाहिए। ये साधारण रूप में उपदेश है। मरना जरूर, आज मरेंगे कल जरूर मरेंगे, इसलिए अपने कर्तव्य पर निश्चित रूप में ठीक रहेंगे। इसलिए कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हारे जो कर्म मने क्या, शास्त्र विहित जब है तो कर्म है, मनमाने ढंग से चोरी ये कर्म नहीं है, ये सब पाप है। इसलिए शास्त्र भी यदि कर्म है तो ठीक है, ऐसे कर्मों का मैं तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य वा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो एक ये श्लोक गीता का इसका अनुसरण कर लेगा बस उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो सुखी और शांति हो जाएगा। तभी कुछ बाकी रहेगा, उसका जीवन इसी से सफल तो नहीं हो जाएगा, सर्वस्व तो नहीं मिल जाएगा, किंतु हां प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसलिए कर्म में हम सबका अधिकार है, शास्त्र विहित कर्मों में अधिकार है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करते हुए हम फल की आकांक्षा को छोड़ करके, कर्म फलों की आकांक्षा छोड़ करके निष्काम रूप में हम जो कार्य तत्व ही या ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, यह रहस्यपूर्ण, ये गुह्य विषय है, एकाई में परिणत हो जाए। बल्कि एकत्व में बहुत्व, बहुत्व में एकत्व, ये तो है हमारे शास्त्रकारों ने माना है, एको बहुश्याम इत्यादि सब बातें हैं, नहीं उसी के हम लोग सब हैं। किंतु कभी भी जीव ब्रह्म भगवान नहीं हो जाएगा, कृष्ण नहीं हो जाएगा, ये गीता उपदेश में कहीं भी नहीं है। इसलिए यहां पर विष्णुअंग लाभ मुक्ति, मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूप ये नव्यवस्थित, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, भगवान की सेवा को हम पा सकते हैं। ये दूसरा, ये जो ज्ञान की बातें जो कही गई, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि सब इत्यादि जहां पर वर्णन पूछा अर्जुन ने, स्थित भी जिनकी बुद्धि स्थिर है वो कौन है, तो इसमें उन्होंने चार पांच प्रश्न किए। इसका जो उत्तर है वही ब्रह्म स्थिति है, और इसकी अंतिम अवस्था है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेषु मत भक्तिम
लभते पर।
ये बतलाया जिसको ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत की स्थिति क्या है वो द्वितीय अध्याय में बतलाया गया, उसी को मैं बता रहा था। गुह्य हानि लाभ कुछ भी हो उसमें मोहित नहीं, दुखेशु अनुदिग्न मन, सुखेशु दुखेशु विगत स्प्रिया, सुख में आकांक्षा उसकी कामना और दुख में महा उद्विग्न हो गया, ऐसा नहीं, संभाव है। हमारे श्रीमद्भागवत की गीता में भी ऐसा बतलाया गया, श्रीमद्भागवत में ऐसा बतलाया गया, यदि दुख अपने आप बिना बुलाया जाता है तो सुख भी आ जाएगा। इसलिए न तत्प्रयास हो कर्तव्य जो था आयु व्यय परम, ये तो आयु भय खय करना है, वो अपने आप होगा भाई। इसलिए क्यों मार्ग भगवत भक्ति की, आत्मज्ञान के लिए चेष्टा करो, भगवत भक्ति के लिए चेष्टा करो। ये गीता का साधारण रूप में गुह्य उपदेश है। यदि इस तत्व को हम जाने कि ये सुख और दुख आएगा, शरीर आज न कल जाएगा, जब जन्म लिया है तो मरेगा ही, रोग भी जरूर होंगे ये शरीर के लिए, शरीर के जाने से ही हम मर नहीं जाते, आत्मा नहीं, ये तो आत्मा के साथ में शरीर का मिलन जन्म और बिछुड़न को मृत्यु हम लोग कह देते हैं, और इसी में शोक में हम मुझ्यमान होकर के अपने कर्म से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ना करके इन चीजों को समझ करके ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सब समय प्रसन्न रहता है, न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। संसार में जितनी भी बुराइयों की जड़ और अशांति की जड़ ये कामना है, यदि हृदय में कोई कामनाएं नहीं संसार की वस्तुओं के प्रति, तो न तो उसे क्रोध होगा, न उसे कोई दुख होगा, न कभी उसका चित्त उद्विग्न होगा। इसलिए भक्ति के लिए भी इस स्थिति की जरूरत है, ज्ञान के लिए भी स्थिति की जरूरत है, जगत में सुख और शांति के लिए भी इस चीज की आवश्यकता है। न शोचित न कांक्षति, समस्त सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में सम रहता है। और ऐसा व्यक्ति अंत में पराप भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति लाभ करता है भगवान की चरणों में, जिसे भगवान भी उसके द्वारा वशीभूत हो जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध इत्यादि में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हम इसके ऊपर में केवल एक सूक्ष्म विहंगम दृष्टि से इस पर विचार करेंगे। तीसरा है गुह्यतर, पहला दूसरा बतला ब्रह्म ज्ञान, अब कुछ परमात्म ज्ञान में हम आएंगे। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही वस्तु है, किंतु तीन प्लेटफॉर्मों से हम उसको देखते हैं, विभिन्न अधिकारी उनको देखते हैं, एक ज्ञानी, एक योगी, एक भक्त। ज्ञानी उनको परमात्मा ब्रह्म के रूप में देखता है, योगी लोग उनको परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं, ईश्वर के रूप में, और भक्त लोग उन्हीं को भगवान के रूप में दर्शन करते हैं। यदि और इसे कुछ तीसरी सीढ़ी पर यदि चढ़ना है, कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके अंदर में साक्षी के रूप में परमात्मा विराजमान न हो। वो विष्णु इसीलिए हैं कि व्यापक हैं, सब जगह सबके वो पोषता हैं, सबका वो पोषण करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, सबके वो नियामक है। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणो लोकमनत्तर कर्मण वंदना, केवल सुख दुख को समान कर लेने से नहीं चलेगा, केवल ब्राह्मी स्थिति होने से ही काम नहीं चलेगा, प्रभु का कुछ ध्यान भी होना चाहिए, प्रभु के साथ में कोई संबंध भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसलिए वो बतला रहे हैं निष्काम भी होना होगा, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। यज्ञार्थात कर्मणो लोकय मनत्र कर्म मंदना तदर्थम कर्म कंतेय मुक्त संग समाचरण। एक इसी श्लोक को भी हम लोग यदि अनुसरण करें तो भी हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। कहते हैं यज्ञार्थात कर्म, भगवान की प्रीति के लिए हम झाड़ू भी देते हैं मंदिर में, ये भी यज्ञ है। यज्ञासा कोई ये नहीं है कि अग्नि में ओम स्वाहा ओम सांग विश्व स्वाहा इत्यादि क्या, यही नहीं, बल्कि अपने को ही भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना। गोपाल मंत्र इत्यादि में स्वाहा शब्द का तात्पर्य इसी रूप में आया है और यही यथार्थ यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मणो, जो भी कुछ करो भगवान के लिए करो, भगवान की तृप्ति के लिए करो। यज्ञार्थात कर्मणो लोकोय मनत्ता कर्म बंधना, और जितने भी कर्म है इसके अतिरिक्त वो कर्म बंधन है, इसलिए तत् अर्थम कर्म कुरु, उनके लिए ही कर्म करो। इसलिए वहां पर बतलाया गया और भी बतलाया गया, अनाशक्त होकर के करो, आसक्ति के सहित नहीं इस जगत के कर्म, और सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रतम स्नामी प्रजतात्मन। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक प्रजतात्मन भगवान की प्रीति के लिए यत्न करता है अंतर हृदय से, ऐसे नहीं दे दिया लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, ऐसे नहीं, पर यत्न करता है अंतर हृदय से, तो कहते हैं कौन सा श्लोक बोला, पत्रम पुष्पम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, धन नहीं है कोई बात नहीं, मन तो है हृदय तो है, हृदय के साथ में एक तुलसी का कोमल सा पत्ता ले दो। पुष्पम कोई भी पुष्प उनको दे दो, फलम कोई भी फल हो, अपने कर्मों का फल हो, ऐसा ये फल हो, बाजार से अपने लिए बाजार से फल मांग खटने जाओ, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के लिए, ये विश्व सम ईशा अवश्य मिदम सर्वम जब किंत जगत जान जगत, ये सब प्रभु का है, प्रसाद के रूप में है, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए जितना जरूरत बस उतना ही ग्रहण करेंगे, और नहीं तो भाई मरण होगा, बड़ी अशांति हो जाएगी, हम उसके मालिक नहीं है ऐसा समझो। ये यज्ञ का यही तात्पर्य, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोक मनत्त कर्म बंधन, नहीं तो कर्म का बंधन हो जाएगा, इसलिए जब करोसी ज यदश्नासी यद्युहोसी यद तपस्यसी सब कुछ कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दो। किसको अर्पण करें ये समझ लीजिए। कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें कि नहीं कहा गया है, मत्तः परतरम किंचित नास्ति धनंजय। हे अर्जुन, हमसे बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है जगत में। जितने भी अवतार हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, ये सब कृष्ण की विभूतियां, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के प्रकाश, कृष्ण के वैभव, ये सब है। मूल रूप में भगवान कृष्ण है और उसमें भगवत्ता में ही सबसे अधिक भगवत्ता, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा चिंताराधा रमण गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर में है। थोड़ा सा वैशिष्ट है, मथुरेश कृष्ण, द्वारकेश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण में, किंतु वहां अभी हम लोगों का अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, हम साधारण रूप में गीता के ऊपर नहीं हम चल रहे हैं अभी, इसलिए यहां कृष्ण को ही परतत्व समझें। कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, कृष्ण के समान कोई दयालु भी नहीं है। श्रीमद् भागवत इत्यादि में वर्णन किया गया है, पूतना उनको कालकूट अपने स्तनों में लगा करके गई मारने के लिए, और उसको मुक्ति ही नहीं धात्री उचित गति दे दी, गोलोक बैकुंठ में उसकी गति दे दी। ऐसा दयालु कौन होगा जिसका भजन करे, और विशेष आज के ब्रज में कहीं भी, ब्रजमंडल में कहीं भी जन्म हो और कृष्ण को छोड़कर के किसका कौन भजन करेगा। इसलिए कहते हैं जद करोसी जदश्नासी जद्युहोसी जदासी जब तपस्त कौन थे तत्कुरुष मदार्पणम अर्पण कर दो। किंतु यहां पर एक बात बतलाना चाहूंगा, इन दोनों श्लोकों में कुछ वैशिष्ट है। कृष्ण को अर्पण करना माने अपनी कोई चीज कृष्ण को देना, और जहां अपनी कुछ है ही नहीं है, शरीर भी नहीं है, मैं भी अपना नहीं हूं, मैं सब कृष्ण का, इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पाप मोक्ष श्यामी, जो वहां जो कहा गया है। भाई पहले अपने को ही अर्पण कर दो, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति के नवलक्षण, पहले अपने को अर्पण कर दो, उनका हो जाओ, फिर तुम्हारा सर्वस्व उनका हो जाएगा, फिर अर्पण करने की जरूरत नहीं होगी। अर्पण करने में कुछ घटिया किस्म की भक्ति होती है, सगुनोपासना हो जाती है, सगुन भक्ति हो जाती है, वो निर्गुणा भक्ति नहीं है। निर्गुणा भक्ति है अपने को भगवान का बना लो और तुम्हारा सर्वस्व भगवान का हो जाए, उस समय में जप करो उसी जदश्नासी। इसीलिए इन सब लोगों को, उपदेशों को महाप्रभु जी ने कहा इहो बाध्या के कहा। और आगे थोड़ा सा चलिए, अब हम लोग चलते हैं गुह्य तम, गीता के सातवें अध्याय में जो बतलाया गया उसको हमने बतलाया अभी तक, वो है गुह्यतम। गुह्यतम में नौम अध्याय जो है उसमें भगवत तत्व का विश्लेषण किया गया, और उस भगवान के प्रति हम उनको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता से कैसे हम सुखी और शांति हो सकते हैं, ये सब चीजों का उसमें विश्लेषण हुआ है। उसमें कर्म के लिए बतलाया गया है, जितना भी अच्छा कर्म करोगे तेतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं खीने पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। भाई वहां से गिरना पड़ेगा स्वर्गलोक से, जितने भी अच्छे कर्म करोगे भाई इसमें सुख और शांति नहीं है, इसलिए इधर मत जाओ। उन्होंने कहा जो प्रकृति की उपासना करता है प्रकृति में जाता है, जो पूर्वजों की देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो ऋषियों की उपासना करते हैं ऋषि लोक में, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक को प्राप्त होते हैं, किंतु माप उपत्य फिर मुझे पाप प्राप्त होकर के फिर वहां से उसका गिरना नहीं होता। वहां से जो कृष्ण का भजन करेगा वो हमें पाएगा और फिर वहां से कभी भी वो नीचे नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, क्यों कि ये बतला रहे हैं तपस्विको जोगी कर्मी भ्रष्ट अधिको जोगी ज्ञानोप भी मतोधिक तस्मात जोगी भवाति। जोगी नांग सर्वेशांग मदगतेन अंतरात्मना
श्रद्धामान भजते जो मंग सम्य युक्त तमो मत। कर्मियों से योगी बड़े हैं, ज्ञानियों से भी योगी बड़े हैं, तब तो कर्म योग भी है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन मार्ग नहीं है, एक ही है। केवल रास्ता, पहला रास्ता का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। जैसे एक कच्चा आम, एक अधपका आम और एक पूरा पका हुआ आम, उसी तरह से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कोई अलग तीन योग नहीं है। उसके पहले भाग कर्म योग, दूसरे को ज्ञान योग, तीसरे को भक्ति योग कहते हैं। तो इसमें हम अभी कौन सा श्लोक, तपस्यति को योगी, तप योगी की अपेक्षा कर्म योगी से श्रेष्ठ, ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ योगी है। और योगियों में योगिनां सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना, अंतर मन से हमारे प्रति योग कर दे, जो कर्म मन जैसे एक और एक दो होता है, वैसे प्रभु की सेवा में तुम मिलो, उनकी सेवा करो। मदगतेन अंतरात्मना, अंतर आत्मा से, इससे बढ़कर के कोई योगी नहीं है। ये सब ही बतलाया हम लोग भी, यदि अभी जो गुह्य गुह्य तर इत्यादि बतलाया है, अपने मन का संयोग किसी प्रकार से भगवान के चरणों में कर दें। और जैसे कि गीता के 9 अध्याय के मन मन अभाव मद भक्त इत्यादि का यदि कर दें, तो हम लोगों का जीवन चरम रूप में सफल हो जाएगा। यहां तक लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं। अर्जुन ने ये सब चीज को सुना। 12वें अध्याय में जिसका भी आप लोगों ने पाठ किया, साधारण नहीं है गीता का, बल्कि सार इसी में है। गीता का एक पेटी है और एक ढक्कन है, एक से लेकर के 6 तक पेटी है, और उधर का ऊपर वाला जो 6 अध्याय है वो ऊपर का ढक्कन है, और एक बीच का जो भाग है 9 से लेकर के ये 12, 9 और 12 इत्यादि, ये गीता का सर्वोत्तम होते है। इसी के अंदर में रत्न की भांति ये है गीता, एक संपूर्ण सोने के थाल या बक्स के समान, और भीतर में ये सब उपदेश है। कहा न गया कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, मैं ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूं, भगवान निराकार हैं, हम भी निराकार हैं। जितने गीता यहां पर भागवत के बड़े बड़े वक्ता लोग आए हैं, बहुत दुख होता है, लाखों जनता तो जाती है, इन चीजों को समझ नहीं पाती, ऊपर से 2-4 रंगीले और पुष्पित वाक्य कह करके भगवान को निराकार बना करके उड़ा देते हैं और जीव को भी, और अंत में कहते हैं कि ऐसा हो गया, ये अंगुष्ठ और ये अंगुली दोनों मिल गई और एक हो गया। क्या एक हो गया? पत्थर हो गया। ये क्या हो गया? निराकार, निर्विशेष, निरंजन, निष्क्रिय, अनादि, अनंत। भगवान ऐसे ही नहीं है, वो तो रसमय है। इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन ने ये सब सुना, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त भगवान को निराकार मानते हैं, जीव को भी निराकार मानते हैं, और अंत में दोनों का मिलन करके एक वस्तु बना देते हैं, वो भी उसमें कोई चेतनता, उसमें सुख, रस, विचार, क्रिया कुछ भी नहीं है, ये तो भगवान को ठूठा बना दिया, निर्विशेष बना दिया। इसलिए कहते हैं कि भाई उससे थोड़ी सी चित्त शुद्धि होगी, और यदि साधुओं का संग हो जाएगा तो लभते पराम, पराभक्ति लाभ हो सकता है, किंतु जरूरी नहीं है ये होगा ही। साधु संग के ऊपर में सब कुछ है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, बिना साधु संग के नहीं हो सकता है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक ऐसे रसिक तत्वज्ञ वैष्णव का संग नहीं होगा, तब तक गीता का ये सब समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इसमें केवल आसक्त ही है, आप लोग भगवान को कभी निराकार मत समझेंगे। अर्जुन को उपदेश देने वाले कहते हैं कि हम अपने को अंगुली दिखला के कहते हैं, वो है ना, वो भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, माम एव जे प्रपद्यन्ते, माम माने किसको,
यदि वो अव्यक्त है तो मन किसको कहे मुझे, मैं कौन हूं, कृष्ण हूं। अंगुली दिखला करके जहां पर करें कैसे हैं, श्याम सुंदर हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं निराकार गीता, निराकार है ऐसे ना, ऐसा नहीं, गीता का उपदेश नहीं है ये सब। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अंत में जब अर्जुन ने कहा मैंने सब आपके उपदेश सुने, अब कृपया हमको इनमें से मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, थोड़ी सी आप कृपा करके मुझे बतलाइए मेरे लिए क्या करना है। भगवान द्रवित हो गए, द्रवित होकर के कहें देखो तुम हमारे बड़े प्रिय हो और मैं तुमसे सर्वगुह्यतमम सुन में परमम वचक, गुह्यतर हो गया, गुह्यतम भी हो गया, अब यहां पर सर्वगुह्यतमम परमम वचः, अब इनको बतला रहे हैं, कहां बतला रहे हैं, 65वें श्लोक में गीता के 18वें में 64 या 65वां श्लोक होगा उसमें बतला रहे, अंतिम में बतला रहे हैं मन मना भवो, मन मना भवो मद भक्तो मद यागी मांग नमस्कुरु माम एव इष्यसि, सत्य में प्रिय में, अर्थात मन मना भवो, ऐसा करो चित्त हमारे में लगाओ, कैसे चित्त लगाओ, कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में, गीता सूत्र है, विस्तृत ग्रंथ नहीं है, व्याख्यान ग्रंथ नहीं है, क्योंकि समस्त उपदेशों तो उपनिषदों और वेदों का भारतीय वांग्मय का ये सूत्र है, जैसे वेदांत सूत्र है इसको कम मत समझेंगे, इसलिए गीतोपनिषद इसको कहा गया, तो उसमें कहते हैं मन मना भव, अर्जुन यदि सचमुच तू हमारा प्यारा है मैं तुमको उपदेश देता हूं, मन मना भव, अपने मन को हमारे में दे दो, हमारे में लगा दो, हमारे हो जाओ, कैसे, इसी के लिए श्रीमद् भागवत में जाना पड़ेगा इसका उदाहरण खोजने के लिए। उद्धव जी को कृष्ण भेज रहे हैं ब्रज में, ओ ब्रज में जाओ, हमारे माता पिता बड़े दुखी हैं हमारे लिए, विशेष करके ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तैक्त दैह का, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तैक्त दैह का, मामेव दैतम पृष्ठम आत्मानम मनसागता, उद्धव ब्रज में जाओ मन मना भवो, ये जो है इसकी व्याख्या बतला रहे हैं, ता मन मनस्का वो अपने मन को दे दिया, मनसागता मन को भी हमारे अंदर में दे दिया है, कैसे दिया है देखेंगे, इसको भ्रमर गीता में गोपियां जब कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं 35वें अध्याय में देखिए, जो श्रीमद भागवत का वो प्राण है, पंच प्राणों में मुख्य प्राण है वो, गोपियां कैसे हो गई हैं, शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है कैसी हो गई है, मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, इसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। राधा जी एक भ्रमर को देखा, अब भ्रमर को देख करके कहती हैं, सोच रहे हैं ये कृष्ण का कोई काले का काला दूत आया, सचमुच में अंतर बाहर काला है, अपने गुंफों पर ये कुमकुम कहां से लगा करके आया, और अधिक मान हो गया। उद्धव जी बहुत दूर से खड़े हैं देख रहे हैं, नंद बाबा का ही प्रेम देख करके विस्मित हो उठे, सोचा जा था पहले जो कृष्ण को छोड़कर के मैं कैसे ब्रज में जाऊंगा, लोकासंग पा करके कृष्ण को भूल गए, देखा जो कृष्ण तो संपूर्ण रूप में ही है, वो मथुरा में तो है ही नहीं और है तो आंशिक रूप में कला रूप में वहां है, संपूर्ण रूप से यही है, देखा गोपियों के निकट ये है। राधा जी कह रही है भाव में विभोर होकर के शरीर का कोई होश नहीं है, किससे बात कर रही है, देख रही है एक भ्रमर है उसे बात, वो भ्रमर राधा जी के चरणों के तार चारों तरफ में घूम रहा है, मानो समझता है कि ये कमल है, वो समझती है कि ये कह रहा है हमको कृष्ण ने भेजा है, आप उनसे सुलह ना मत कीजिए, आप उन पर मान मत कीजिए, वो निर्दोष हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। कैसा सुंदर उसमें वर्णन किया है, रसिक ही वेद्य है उसके, रसिकों का अतिरिक्त उस चीज को नहीं समझेगा। विशेष करके जब उन्होंने कहा मृगयु कर्पन्द्रम व्यव्यधे लुप्त धर्मा, इस श्लोक में तो चरम हद कर दी उन्होंने तीरा रस का, एकदम भूल गई। गोपियां खोजते खोजते कृष्ण को तन्मय होकर के अपने को समझा कि मैं ही कृष्ण हूं, किंतु ये वो ब्रह्मवाद नहीं, ये प्रेम का एक विकार है। तो एक छोटी सी लघु कथा यहां पर मैं उपस्थित करता हूं। ब्रज में कोई नवेली अभी दो चार दिन हुए विवाहित होकर के कोई आई है, कृष्ण गोचारण करने के लिए सवेरे जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ में, चारों तरफ में हल्ला हो गया, ये कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, और की तो बात क्या, बच्चे बूढ़े बूढ़ी बच्चियां लड़कियां किशोरियां विवाहिता अनविवाहिता, यहां तक कि अंधे भी अंधे का हाथ पकड़ करके कृष्ण का ये गोचारण गमन लीला दर्शन करने के लिए चलने लगे। कोई अपने दरवाजे के पास में खड़ी हो गई नवेली, कोई खिड़कियों से झांक रही है, कोई दरवाजे पर कार करके खड़ी हो गई। इस तरह से ब्रज में ऐसा कोई नहीं था जो निकल करके दरवाजे पर ना आ गया हो और कृष्ण के उस मधुर रूप का दर्शन करना कर रहा है। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया, वही आंखें धन्य है जो कृष्ण को इस समय कृष्ण और बलदेव के साथ में जाते हुए अथवा बलदेव जी के पीछे पीछे जो कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं, इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे मठ में इन्होंने की थी, ये कृष्ण बलदेव नहीं, कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले मधुर बंसी बजाने वाले जो कृष्ण है जो जा रहे हैं, हंसते हुए मुख से मुखारविंद से तिरछी नजर से गोपियों की तरफ में वो देखते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे कृष्ण का जिसने दर्शन नहीं किया उसका जीवन और उनकी आंखें न रहने के बराबर है, उनकी आंखें व्यर्थ है। गोपियां देख रही हैं सभी, नवेली को उसकी सास कह रही है ऐ देख अभी आपको मत जाना, तो मैं तो जाऊंगी दर्शन करने के लिए उनका, मत जाना, काला भुजंग है बड़ा विषधर है, काट देगा कभी विष नहीं उतरेगा, मत जाना खबरदार, मैं किसका बतला रहा हूं, मन मन अभाव कैसे मन मन अभाव होता है, इसका एक झांकी देने के लिए। तो वो कह रहे हैं मत जाना, कहिए तो तुम्हारी लड़की जो जा रही है, लड़की जा रही है तो तुम क्यों जाएगी, तुम मत जाना, अरे उसकी बहू भी तो जा रही है, मैं कहती हूं हमारी बात, मैं परिपक्व हूं, मैं इस बात को समझती हूं, कभी बीच नहीं करेगा जीवन भर, नहीं तो मैं तो जाऊंगी, मेरी बात नहीं तुम माननी, अब तो तुम क्यों जा रही हो बूढ़ी होकर के, किसी तरह से नहीं मानी वो आगे, किंतु बूढ़ी बढ़ गई आगे, कहिए तुम मत जाना मैं अभी आ रही हूं, उसके पीछे पीछे ये भी चल दी और दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। वहने श्लोक कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चले जा रहे हैं, सखा लोग चारों तरफ से घेर रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्ण बृहत भाषक कनक, वो ठीक वही की प्रतिमूर्ति कृष्ण बड़े ही सुंदर लुभावने रसिक कृष्ण चले जा रहे हैं, आंखें उनकी मानो कुछ खोज रही हैं, किसको खोज रही हैं, कुछ नवेलियों को ही खोज रहे हैं, मानो नजर गई उनकी, देखा उन्होंने और वो तन्मय होकर के वहीं से देख रही है कृष्ण को। कृष्ण ने सोचा कि इसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, सबकी मनोकामना वो कृष्ण पूर्ण कर रहे हैं, बस वहीं से एक बछड़े को बिदका दिया, उसका पूंछ थोड़ा सा मोड़ दिया और सुंदर हंस सा बछड़ा कूदता हुआ एकदम ऐसा कृष्ण ने डायरेक्शन उसको दिया जैसे एकदम ठीक दरवाजे के पास में पहुंचा और झट कृष्ण उसके पीछे से ही मानो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, बस झट वहां पर पहुंचे। गोपी एकदम तन्मय होकर खड़ी थी, कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण ने अपनी बंसुरी दी और उसके चिबुक में थोड़ा सा स्पर्श करा दिया, उसके तरफ में ऐसी मनमोहन रूप से दृष्टि से उसको देखा, वो दृष्टि उसके भीतर में जाकर उसके मन को अपहरण कर लिया और लेकर के साथ ही साथ में कृष्ण उधर से छलांग मारते हुए चले गए। बस गोपी रही, उसका शरीर रहा, मन कृष्ण के साथ में चला। खड़ी की खड़ी रह गई, कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ना बंद हो गया, सब लोग जहां तहां अपने अपने घरों में चले गए। घंटों बीत गए, वो दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। साथ में कहा था ना मैंने चढ़ जाएगा बीस, चलो चलो चलो, पिलाया शरीर घर में ले गई। बोले जी इसका मन तो होश में नहीं है, जाओ घर से कोई मटका ले आओ दही का और उसका मंथन करो, अभी तो जाओ ले आओ। कहा तो दिया तो मन तो था नहीं, घर में गई और मटके के बदले में सरसों का मटका उठा लाई और दही का वो लेकर के मंथन मंथनी और उसी राई को मथने लग गई। दूध है दही है क्या है उसको एक जानी, क्योंकि चित्त उसका नहीं, मन मना भाव कृष्ण के साथ में। शासन देखा, अरे ये क्या कर रही, इसको दूसरा ऐसा कोई काम दो जो चित्त इसका लौट आए, बस होश में आ जाए। उन्होंने उसको कहा पानी लाओ, तो पानी भर लाओ, एक घड़ा दे दिया उसके ऊपर में, एक घड़ा दे दिया, रस्सी भी मोटी से दे दी और एक छोटा सा बच्चा भी उसी गोद में दे दिया। जाओ कुआं कुछ दूर, कुएं पर गई, बच्चे को उतारा, घड़े को भी उतारा, रस्सी भी निकाली और उसमें फांस बनाया, उसमें बांध करके एक घड़े में और उसको नीचे गिराएगी, पानी भरेगी। मन तो है नहीं, मन मनाभाव है। उसने उस रस्सी को लेकर के उस बच्चे को जो बिठाया था खड़ा समझ करके उसी के गले में लेकर के और कसने लगी। गोपी अंकारी ये देखो 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 क्या कर, अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, कोई कहती है इसको भूत लग गया। आज जो जानती हैं इस विषय को, ये कृष्ण चीज का चित्त हर लेते हैं, ऐसे ही हरते हैं। उन्होंने कृष्ण इसको भूत नहीं लगा, इसको नंद का पूत लगा है, समझ गई वो। इसको कहते हैं मन मनाभाव, न जाने कब तक होश में आई कि नहीं आई। इसके बाद में वर्णन तो नहीं किया है गोपियों हमारे गोस्वामियों ने, किंतु ये उदाहरण दिया, ये मनमना भाव। यदि ऐसा मन कोई कृष्ण में चित्त दे दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, विशेष करके गोपियां रूपी गुरु यदि मिल जाएं, कहीं ललिता विशाखा मिल जाएं, तो ऐसा संभव। तो गीता का यह चरम जो उपदेश है मनमना भाव, ये हो सकता। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके जब प्रभु ये ऐसा संभव पर नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है, ये कैसे हम ऐसा मन मनाभाव अपने मन को दे देंगे। तो युद्ध आप कहते हैं युद्ध भी करो और हमारा स्मरण भी करो, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने मद भक्तो तब द्वितीय रूप में उन्होंने कहा, अच्छा और थोड़ा सा नीचे उतर, यहां पर हो सवास है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सत्ता महात्मन वेदनम अथवा योग से महाम्यम अनन्य चिंतयंतो मांगे जनु जना पर्युपासते तेषां नित्यभिजुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम। जो लोग अभी होश तो है, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, तत्वज्ञान भी उनका पहला जो हो गया है वो हो गया है, दूसरा गुह्यतर भी उनका हो गया है, उससे ऊपर उठ गए हैं, गुह्यतम भी हो गया है, अब सब गुह्यतम में आने वाले हैं। अभी हुआ नहीं, अभी भावावस्था तक प्राप्त है, जैसे बिल्व मंगल का हुआ, बिल्व मंगल को साधक कहते हैं, उसके नीचे वाले अभी साधक नहीं है, विशेष करके रागानुगा के। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और एक होती है रागानुगा। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके इस रागानुगा प्रेममय भक्ति को देने के लिए जगत में आए थे, गीता का भी वही उद्देश्य है अंत में, किंतु सूत्र रूप से यहां पर वर्णन किया गया। इसलिए यदि जिसका मन ऐसा नहीं हुआ कि हम उनमें कृष्ण में अपने चित्त को दे सकें, तो इतना तो कर सकते हैं कि भगवान का सततम कृतयंतो मांगे जनो पद्युपासते, सब समय भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, उनका कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जैसे बिल्लो मंगल, किंतु जैसे बिल्लो मंगल जी ने किया ऐसा नहीं हो तो उसके नीचे और आएंगे। कहते जी कैसे, हम सुनते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अर्जुन। बहुत दिनों की बात है, गीता का अनुशीलन करते थे और गीता के समस्त विषयों पर, उपदेशों पर बड़ा उनका बहुत ही श्रद्धा थी। उसके टीकाकार भी हैं गीता के। उन्होंने, अब मैं समाप्त ही करना चाहता हूं, दो चार पांच मिनट लगेगा। तो अर्जुन जी जब गीता के श्लोकों की का अर्थ और व्याख्या करते हुए इस श्लोक पर आए, अनन्य चिंतयंतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहम्यहम्। जो लोग सब समय अनन्य चित्त होकर के अपने समस्त सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज होकर के स्वरूपतः और सिद्धांततः सब कर्मों को जो हमने छोड़ दिया है, एक तो होता है कर्मों में आसक्ति छोड़ करके कर्म करें, एक ये त्याग होता है, और एक होता है स्वरूपता अर्थात आसक्ति और स्वरूपता भी उसको छोड़ दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, ये स्वरूपता और फलता दोनों छोड़ दिए हैं। और लोग हैं जिसको उन्होंने निष्काम कर्म इत्यादि किया है। तो यहां पर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति स्वरूपता भी कर्मों को छोड़ दे तो भी कुछ न कुछ खाने पीने इत्यादि के लिए तो करना पड़ेगा, किंतु उसको भगवत उपासना में बना करके करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मन मना मद भक्तो, हमारे भक्तों कैसा, जैसे अर्जुन जी है कर रहे हैं गीता का, करते करते जब ये श्लोक आया जो अनन्य रूप से हमारी भावना करता है और उसको और कर्मों के लिए समय नहीं मिल पाता है, खाने पीने इत्यादि के लिए योग और क्षेम, जो चीज नहीं है उसको दे देना आवश्यक और जो चीजें हैं उसकी रक्षा करना, ये क्षेम है, मैं स्वयं अपने कंधे पर ढो करके पहुंचा आता हूं। उन्होंने आज 500 वर्ष हो गए गीता पढ़ते हुए और भगवान का भजन करते हुए, आज तक ढो करके नहीं ले, हो सकता है किसी के माध्यम से कोई चीज पहुंचा दें, ये तो मैं मान सकता हूं, ढो करके नहीं ले जा सकते। उन्होंने एक लाल काली से स्याही से उस पर उन्होंने काट दिया और काट करके चले गए भिक्षा में। उस दिन दोपहर क्या तीन पहर तक उनको कुछ भी दीक्षा नहीं मिली, लौट रहे थे घर में तीन प्रहर पर। इसी के बीच में दोपहर में एक छोटा सा सांवलार सलोना पीतांबर का कपड़ा पहने हुए साधारण बालक जैसा एक बहंगी पर, बहंगी कहते हैं ना, कंधे पर रखते हैं, दोनों तरफ में बड़ी बड़ी टोकरियों में चावल दाल आटा घी मैदा बूरा जो सब सामान होना चाहिए सभी सामान दोनों पर भरा हुआ, और छोटा सा बालक किशोर 13, 13.5, 14 वर्ष का अधिक से अधिक, बड़ा सुकोमल सी अंग, पसीने से लथपथ हाँफता हुआ दरवाजे पर आया, मैया दरवाजा खोलो, बड़े सुरीले कंठ से बोला। उनकी पत्नी ने कहा जी कौन है, मैं पंडित जी का शिष्य हूं, उन्होंने कुछ सामान भेजा है। तो उसने खोल दिया, एक तो कुछ कपड़े तन ढकने के लिए नहीं थे, ब्राह्मण देवता ही उनके कपड़े पहन करके चले गए, फटाफटा कपड़ा उन्होंने अपना पीताम्बर फेंक दिया उसके ऊपर में और दरवाजा खोल दिया। उन्होंने दरवाजा खोलने के बाद ये लेकर के भीतर में पहुंचे, पसीने से एकदम लथपथ, मुख कुछ सूखा हुआ, क्लांत हो गए हैं। अरे बेटा वो पंडित जी कहाँ है, पंडित जी भी उधर ही रह गए। बोली जी बेटा तू ले जाकर के हमारे घर में दे आ, मैं आ रहा हूं। तो इतना भार तुम्हारे कंधे पर छोड़ दिया, ये तो बड़े निष्ठुर, आज तक मैं उनको तो निष्ठुर नहीं जानती थी, मैया क्या कहूं, केवल इतना भार ही नहीं, उन्होंने बुलाया, मेरे आने में कुछ विलंब हो गया और विलंब होने के नाते मुझ पर बिगड़ गए और अपने नाखूनों से मेरे पीठ में चीर दिया, बिगड़ कर देखा सचमुच में ऐसे मालूम रक्त उद्गम हो रहा है, वो लाल एकदम यहां से उड़ा हुआ, देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। बोली इतने निष्ठुर पंडित जी, आ जाते हैं तो मैं देखती हूं उनको। एक बच्चे को अपने आधा सामान वो खुद ही ले सकते थे, दूसरे शिष्यों को बुला लेते, सब इस पर छोड़ दिया और उसको भी ऐसा बकोट दिया उन्होंने, नोच लिया। अच्छा तो ठीक है बेटा, आने दो उनको, तुम बैठो, मैं अभी रसोई बनाती हूँ, खा पी करके जाना, ऐसे मत चला जाना, अभी बैठो ही नहीं, बस साथ साथ में कुछ चावल और सामान ले करके और रसोई बनाने के रसोई घर में गई। और इतने में थप थप की आवाज हुई सामने, पंडित जी ने कहा दरवाजा खोलो, ये कुछ कुड़ती हुई, कुछ बिगड़ती हुई, कुरोश में भरी हुई, पंडित जी को दो चार जली कती सुनाएंगी। दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला, पंडित जी आए, उन्होंने उलाहना दिया, अरे उस बच्चे के ऊपर में इतना भार तुमने दे दिया, तुम नहीं ला सकते थे, अपने तो निठल्ले ऐसे ही हाथ घुमाते हुए चले आए और बच्चे पर सब भार दे दिया, और ऊपर से आपने इससे काट दिया। अरे कौन बच्चा, कहां सामान, कहां क्या, मुझे कुछ पता नहीं है। तो पता भी नहीं है, अरे बच्चा तो वहीं पर बैठा हुआ है, तो चलो तो जरा बच्चा देखो। गया देखा, खोजते ढूंढते 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 कहीं बच्चा नहीं। कहा जरा वो लाना तो गीता, गीता लाया, उनके सामने दिया गया, देखा खोल करके जो वो जो लाल पिन है जो स्याही का बना हुआ था, लाल स्याही ही नहीं है, आंखों से आंसुओं की धार गिरने लगी और अपने स्त्री के चरणों में पड़ गए। तू इतनी सौभाग्यशी जो उनको देखा, हमको संदेह हो गया था, इस संदेह को दूर करने के लिए प्रभु योग और क्षेम भी करते हैं, यदि वैसा कोई भक्त हो तो हमारे लिए करता है ने? तो ऐसा ही हो जाता है। दोनों फुट फुट करके रोने लगे। ये है मद भक्त, भक्ति का ऐसा ही अनुशीलन होना चाहिए, ये गीता का तात्पर्य है। गीता का तात्पर्य कर्म नहीं है, कर्म उस साधारण लोगों के लिए है जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं, तो उनको वैदिक कर्म जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है करते हुए भक्ति करें और उनसे ऊपर उठ हो जाए तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में, ऐसे अनन्य भक्ति करना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये हमसे इस युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा, हमारे लिए कुछ और सरल करके कहिए। तब उन्होंने कहा मज्जाजी भव, हमारा जजन करो, पूजा अर्चन तो कर दो प्रभु। पूजा अर्चन में तो घी इत्यादि सामान चाहिए, फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, ये सब यजन यज्ञ अथवा अर्चन इत्यादि, यहां पर अर्चन इत्यादि से तात्पर्य है, कोई द्रव्य से लेकर के भगवान का पूजन उनको अर्पण इत्यादि करना है। इस यज्ञ स्थली में धनुष और बाण और ये सब चीजें भरी पड़ी हैं, इसमें वैसा भाव मेरे लिए कहां से संभव है। प्रभु कुछ और नीचे उतरिए, कुछ मेरे लिए ऐसा कहिए जो मैं कर सकूं। मांग नमस्कुरु, इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, एक बार भी यदि कृष्ण को प्रणाम कर दिया फिर उसका जन्म नहीं होता है। कृष्ण का प्रणाम करने वाला कभी भी जगत में नहीं आ सकता है, एक बार भी प्रणाम कर दे। प्रणाम माने क्या, प्रकृष्ट रूप से नमन करता है, न माने अहंकार को दूर हो करके और भगवान के चरण में सर्वस्व समर्पण करना, ये प्रणाम का तात्पर्य है। एक बार भी यदि ऐसा कोई प्रणाम कर दिया उसका जीवन सार्थक हो जाए। अथवा कहते हैं इसका अब एक अर्थ लीजिए, भगवान को प्रणाम करते हुए उनका जजन करते हुए उनमें नौधा भक्ति या चतुर्धा अथवा तीन प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अथवा एक नाम संकीर्तन, ऐसा करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाए और उन कर्मों को भी करे तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। गीता का यही सर्वोत्तम सार है। यदि हम लोग इनमें से एक को भी या सबको भी सामूहिक रूप में फिर यदि ग्रहण कर सके, हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, फिर लौट करके इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। यही आज मैं संक्षेप में अपना वक्तव्य प्रकाश किया। हमारे पूज्य हमारे ये श्रद्धेय स्वामी जी शास्त्री जी हैं और हम में से यदि कुछ गलती हुई हो तो आप लोग इसके लिए क्षमा करें। वंशा कल्पतु
हम लोगों की सुविधा और असुविधा को भी देख रहा हूं, इसलिए आज मैं अपना कुछ विशेष वक्तव्य दूं ऐसा समय नहीं, 8:30 बज चुके हैं, इसलिए मैं केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अति अल्प समय में मैं अपने कार्य को समापन कर और गोष्ठी का समापन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग ये न समझें कि फिर अब 8:30 से 9 या 9:30 बजेंगे ऐसा भ्रांति निकालते मन से। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनः आज सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अपने श्रीपद आचार्य चरणों को चरणों में मैं शत शत नमन करता हुआ आज के मुख्य अतिथि वंदनीय स्वामी त्रिनंदी स्वामी श्री भक्त वेदांत नारायण जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ने एक बार राधा तत्व के विचार के लिए मुझे याद किया था और मैं इन्हीं के गौड़िया मठ में जाकर मैंने राधा और कृष्ण तत्व की एकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे और बताया श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ है। मैंने कहा श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ नहीं है, आप बहुत ही प्रसन्न हुए, आपकी दयालुता, आप श्री राधा तत्व के परमाराधक हैं। अभी इनके शिष्यों में से एक व्यक्ति बोल रहा था सबका तत्व श्याम है और श्याम की आराध्य श्री राधा रानी है। राधा रानी को हम आप समझ नहीं पाए हैं, राधा तत्व बहुत ऊंचा है, इसीलिए राधा तत्व को प्रकट करना नहीं, जैसे अपने मुख्य धन को लोग छिपाते हैं, गोपनीय होता है, अपने धन की चर्चा कोई करना नहीं चाहता, उस प्रकार हमारे वृज तत्व का परम गोपनीय तत्व श्री राधा रानी। विशेष में क्या कहूं, स आत्मानम द्वेधा पातयत पतिश्च पत्नी च भवताम। हमारे ब्रज की आराध्या मुख्य शक्ति श्री राधा रानी ब्रह्मानु नंदिनी किशोरी जी है, यदि उन गौर तेज का की कृपा हो जाए तो श्याम तेज अपने आप हृदयारूढ़ हो जाएगा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। महाराज इधर बरसाना है राधा रानी का तो उधर नंदगाम श्री ठाकुर जी का है और बीच में प्रेम सरोवर है। सच्चा प्रेम तो श्री राधा ने कृष्ण के साथ किया, वह हमारे लौकिक व्यवहार में किसी को माता बना ले या किसी को पिता बना ले वो तो जगत जननी है।